सफा नंबर 396। आपके नज़दीक ज़िंदगी जहद प्याम का नाम है, आप इसलिए तलीम का मकसद कशमकश हयात की तैयारी होना चाहिए, ना कि तरबियत दिमाग। आप बार बार कुव्वत की ज़रूरत और क़वाए इंसानी की अहमियत की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। इनकी राय में मुसलमानों का दबाव जुज़ इस बात का नतीजा है कि वो गुलामाना अतात और अज्ज़ो इनकसार जैसी मनफी और इन अफाली कदरों को नेकियां समझ बैठे हैं। इलामा के ख्याल में शायर का मकसद हसूले कुव्वत के लिए मुसलमानों को मुसलसल जद्दोजहद पर अकसाना है, क्योंकि इनका इनकलाब आफरीन अमल ही इन्हीं सियासी मगलूबियत और अखलाकी पस्ती से निजात दिला सकता है। इकबाल मुसलमाना ने हिंद की कौमी मईशत का गहरा शौक रखते हैं और इनके अफलास को इनके अखलाकी इन्हितात का एक अहम सबब करार देते हैं। ब्याज में अकसाम में हुकूमत के मुतल्लिक अरशाद होता है, मेरी राय में हुकूमत ख्वाह जिस किस्म की हो वो बहर सूरत कौमी करदार के मुतय्यन करने वाले अवामर में से हो। सियासी इकतदार का जवाब कौमी करदार के हक में भी तबाहकुन साबित होता है। मुसलमाना ने हिंद अपने सियासी जवाब के साथ ही बड़ी सुरात से इखलाकी इन्हतात में मुबतला हो गए। इतिहाद मिल्ली के मुतल्लिक फरमाते हैं, हमारे मिल्ली इतिहाद का इन्हसार इस बात पर है कि मजहबी असूल पर हमारी गिरफ्त मजबूत हो। जो ही ये गिरफ्त ढीली पड़ी हम कहेंगे के भी नहीं रहेंगे, और आयन मुमकिन है कि हमारा अंजाम वही हो जो यहूदियों का हुआ। वतनियत के रद्द में तहरीर करते हैं, इस्लाम का जहूर बुत परस्ती के खिलाफ एक इत्तेजाज की हैसियत रखता है। वतनियत भी बुत परस्ती की एक लतीफ़ सूरत है। मुस्लिम कौमों के वतनी तराने मेरे इसी दावे का सबूत है कि वतन परस्ती एक मादी शय की प्रत्यक्ष है से अबारत है। इस्लाम किसी सूरत में भी बुत परस्ती को गवारा नहीं कर सकता, बल्कि बुत परस्ती के तमाम इकसाम के खिलाफ इत्तेजाज करना हमारा अब्दी निस्बुल ऐन है। इसलिए इस्लाम जिस चीज़ को मिटाने के लिए आया है इसे इस मुसलमानों की सियासी तंजीम का बुनियादी असूल करार नहीं दिया जा सकता। पैगम्बर अलैहिस्सलाम का अपनी जाए पैदाइश मक्के से हिजरत फरमा कर मदीने में क़याम व वसाल गलबन इसी हकीकत की तरफ एक मख्फी इशारा है। शजरात में एक अंदराज तो फकत इस फिक्रे पर मबनी है, कौमें शायरों के दिलों में जन्म लेती हैं लेकिन सियासतदानों के हाथों नशोनुमा पाती हैं और मर जाती हैं। 15 मई 1910 का अंदराज आसमान पर दुमदार सितारा देखते वक्त इकबाल के ज़ाती तासरात का गमगाज है। कल तकरीबन 4 बजे सुबह मैंने कुरा अर्ज के इस अजीमुल शान जायर को देखा जो हैली का दुमदार सितारा कहलाता है। फ़ज़ाए बसीत का ये पुरशिकवा तराग 75 वर्ष में एक बार हमारी फ़ज़ाए आसमानी पर नमदार होता है। अब मैं दोबारा इसे सिर्फ अपने पोतों की आंखों से देख सकूंगा। मेरी ज़हनी कैफियत अजीबो गरीब थी, मुझे यूं महसूस हुआ गोया कोई चीज़ अपनी नाकाबिले बयान वस्तों समेत मेरे वजूद की तंग हदूद में समा गई है। तहम इस ख्याल ने कि मैं इस आवारा मुसाफर को फिर न देख सकूंगा मुझे अपनी ज़ाती हस्ती की अंधो नौब हकीकत का एहसास दिलाया, और लजा लहजा भारत के लिए मेरे तमाम बलबले सर्द पड़ गए। मकाला मुस्लिम कम्युनिटी मिलत इस्लामिया में कौमों की हयात व मौत पर फलसफियाना नुक्ता नज़र से मुख्तसर तारफ के बाद मिलत इस्लामिया की हैत तरकीबी इस्लामी तमदन की यकजहती और मुसलमानों की कौमी हस्ती का तसलसल बरकरार रखने के लिए इनमें किसी किस्म के किरदार की ज़रूरत है। ऐसे मौजूद को जेर बहस लाते हैं, फरमाते हैं कि सफ़ा नंबर 398 मुसलमानों और दूसरी कौमों में असूली फ़र्क यह है कि कौमीत का इस्लामी तस्वर दूसरी अकवाम के तस्वर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इनकी कौमीत का असल असूल ना इश्तराक ज़बान है, ना इश्तराक वतन और ना इश्तराक अगराज इक्तसादी, बल्कि वो इस बरादरी में शामिल हैं जो पैगम्बर इस्लाम ने कायम की थी। हयात व कायनात के मतलब इनका एक मखसूस अकीदा है, और जो तारीखी रवायात इन सब को तरक्का में पहुंची हैं वो भी इन सब के लिए यकसा है। इस्लाम सिर्फ मजहब ही नहीं बल्कि बयक वतन एक ख़ास तहजीबी तसव्वुर कौम और वतन भी है जो अकीदत इस्लाम पैदा करता है। इससे सिर्फ कौमी या मिल्ली पासदारी मुराद है, दूसरी अकवाम को बरनज़र तनफ़र देखना इनके मफहूम में दाखिल नहीं है। इनकी निगाह में ज़माने हाल में वतनीयत का ख्याल जो कौमियत के तसव्वुर से पैदा होता है हल्कि मुल्की होने के सबब मादी है, और यह तसव्वुर असूल इस्लाम के सरासर खिलाफ है। तौहीद पर एतकाद के हमागीर वफाक का नुक्ता जिस पर मुसलमानों की मन हैसुल कौम वहदत का इंसार है अपने मफहूम के लिहाज से बकौल इकबाल इनके लिए अकली नहीं बल्कि कौमी है। बस इस्लामी असूल या रवायात की इस्तलाह में अगर मुसलमानों के हाथ से खुदा की रस्सी छूट गई तो इनकी कौम का शिराजा बिखर जाएगा। इस्लामी तमद्दन की यक रंगी के सिलसिले में इरशाद होता है कि इस्लामी तमद्दन सामी अरबी तफक्कर और आर्या ईरानी तखैल के इख्तलात का महासर है। कौमी किरदार की तमीर के मतलब औरंगजेब आलमगीर की मिसाल पेश करते हैं, जो आपके नज़दीक बरसगीर में मुस्लिम कौमीत का मानी था और तहरीर करते हैं कि कौमी सीरत का वो असलूब जिसका साया आलमगीर की ज़ात ने डाला खासतन इस्लामी किरदार का नमूना है। इसके बाद मुसलमानों में सरकारी मुलाजमत के अलावा तजारत और सनत हराफत के फरोग के अलावा मुस्लिम अवाम की माशी हालत सुधारने के लिए सनती तलीम को आम करने और मुस्लिम कौम के इस्लामी तशख्स को बरकरार रखने के लिए एक मरकजी इस्लामी दारुल उलूम के क्याम की ज़रूरतों पर जोर देते हैं। मरकजी इस्लामी दारुल उलूम के क्याम के सिलसिला में फरमाते हैं, हिंदुस्तान में इस्लामी यूनिवर्सिटी का क्याम एक और लिहाज से भी नहायत ज़रूरी है। कौन नहीं जानता कि हमारी कौम के अवाम की अखलाकी तरबियत का काम ऐसे उलमा और वहाद अंजाम दे रहे हैं जो इस खिदमत की अंजाम दही के लिए पूरी तरह से अहल नहीं है, इसलिए कि इनका मुबल्लग इस्लाम मुबल्लग इल्म इस्लामी तारीख और इस्लामी अलूम के मतलब नहायत ही मद्दूद है। इखलाक और मजहब के असूल फरोग की तलकीन के लिए मौजूद ज़माना के बहस को तारीख इक्तसादियात और इमरानियात के हकायक अजमिया से आशना होने के अलावा अपनी कौम के अदब और तखैल में पूरी दस्तरस रखनी चाहिए। अल नदवा अलीगढ़ कॉलेज मदरसा देवबंद और इस किस्म के दूसरे मदारस जो अलग अलग काम कर रहे हैं इस बड़ी ज़रूरत को रफा नहीं कर सकते। इन तमाम बिखरी हुई तलीमी कुव्वतों का शिराजा बंद एक वसी तर अगराज का मरकजी दारुल उलूम होना चाहिए, जहां अफराद कौम ना सिर्फ खास काबिलियतों को नशोनुमा देने का मौका हासिल कर सकें बल्कि तहजीब का वो असलूब या सांचा भी तैयार किया जा सके जिसमें ज़माना मौजूदा के हिंदुस्तानी मुसलमानों को ढालना ज़रूरी है। इस मजमून का मतलब ये भी जाहिर करता है कि ऐसे ज़माने में जबकि बरसगीर के बेशतर मुस्लिम कायदीन का सियासी फिक्र नहायत ही तंग दायरे तक महदूद था, इकबाल ने कौमियत इस्लाम के असूल की रोशनी में मुसलमानों के मसाइल का तजलिया किया और इनका हल पेश किया। मजमून इस्लाम में सियासी फिक्र पर तबसरा करने से बेशतर इस दौर के मुसलमान आलम के हालात पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। इस ज़माने में मुसलमान हिंद तुर्की में खिलाफत का तसलसल कायम रखने को बड़ी अहमियत देते थे, लेकिन तुर्की के अंदर यंग तुर्क पार्टी या अंजमन इतिहाद व तरक्की सुल्तान अब्दुल हमीद की मतलक और नाम खिलाफत का वक्ती तौर पर खात्मा करने के बाद दस्तूरी हुकूमत का इनकार कर चुकी थी। सफ़ा नंबर 400। इसी तरह ईरान में भी शदीद तवद्दो के बाद शाह ने आइन पसंदों के हाथों मजबूर होकर दस्तूर नाफज किया था। इस मकाले के तारफी हिस्से में इकबाल ज़माना जहलियत के अरब कबायल में विरासत हुकूमत के तरीके का जिक्र करने के बाद तहरीर करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम की ज़ात अक़दस और अन हजूर की हमागीर तलीमात के ज़ेरे असर अरब कबायल मुतहद होकर एक मुश्तरक और मुसलसल फैलती हुई मिल्लत की सूरत में उभरे। मुवरसती मलकियत का ख्याल इनके अजहान के लिए एक कतई गैर मुल्की तसव्वुर था। फिर इकबाल खुलफाए राशिदीन के दौरे पर तबसरा करते हुए फरमाते हैं कि इब्तदा ही से ये बुनियादी असूल तस्लीम कर लिया गया था कि इस्लामी तलीमात के मुताबिक सियासी इक्तदार सलन अवामुन्नास के हाथों में है और इनकी इज्तमाई रजा के बगैर किसी किस्म की भी हकमियत का क्याम मुमकिन नहीं। इस सिलसिला में आपके नज़दीक दो नुक्ते बुनियादी हमीयत के हामल हैं। अव्वल ये कि मुस्लिम कॉमनवेल्थ दौल मुश्तरका इस असूल पर मबनी है कि इस्लामी कानून की निगाह में तमाम मुसलमान आम लिहाज से बराबर की हैसियत रखते हैं, और दोम यह कि इस्लामी कानून के तहत मजहब और सियासत में कोई इम्तियाज मौजूद नहीं। नुक्ता अव्वल की वजाहत करते हुए तहरीर करते हैं कि इस्लाम का सियासी मकसद तमाम नस्लों और कौमियतों के अदगाम से एक मिल्लत की तमीज है। इस्लाम के नज़दीक कौमियत बजाय खुद सियासी अर्तका की आखिरी मंजिल नहीं है, क्योंकि इस्लामी कानून के अमूमन असूल फितरत इंसान की बुनियाद पर वाज़े किए गए हैं, किसी मखसूस कौम की खसूसियात पर नहीं। बस ऐसी कौम मिल्लत की बातनी पियोस्तगी का इन्हसार ना तो नस्ल पर हो सकता है, ना जुग्राफियाई या इलाकाई हदूद पर, ना इश्तराक के ज़बान पर और ना माशरती रवायात की यकसानियत पर, बल्कि इसका इन्हसार दीनी और सियासी नस्ब ऐन की वादत पर है या इस नफ्सियाती कफियत पर के इसके तमाम अफराद में फिक्री यगानत मौजूद हो। इकबाल की राय में ऐसी कौम का मिसाली वतन सारी दुनिया ही हो सकती है। नुक्ता कौम की तशरीह करते हुए तहरीर करते हैं कि इस्लाम के नज़दीक मजहब और रियासत एक वहदत है। जहाँ तक इस्लामी कानून के दुनियावी सेकुलर मामलात का तल्लक है, इनकी तफासील کی تشریح پیشہ ور وکلا پر چھوڑ دی گئی ہے۔ اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہے کہ اسلامی قانون کا پورا ڈھانچہ عملی یا انتظامی شکل میں قاضیوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ بس اسلامی دستور میں قانون سازی کا کام وکلا کو سونپا گیا ہے، لیکن اگر کوئی بالکل نیا مسئلہ پیدا ہو جائے جس کے حل کے متعلق اسلامی قانون میں کوئی وضاحت نہ ہو تو اجماع امت ایک مزید ماسخ قانون کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اقبال نے سنی نظریہ خلافت کی تشریح 11ویں صدی عیسوی کے شافی فقہ الماروردی کی تصنیف الحکام السلطانیہ کی روشنی میں کی ہے۔ مقالے کا یہ حصہ تحقیقی نوعیت کا ہے اور اس کے مطالعے سے ظاہر ہے کہ ابن خلدون سمیت کئی اور فقہ کی تحریریں بھی اقبال کے زیر مطالعہ رہی ہوں گی۔ اس موضوع پر شیعہ نقطۂ نظر اور خوارج کے مختلف فرقوں کے نظریات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ شیعہ نقطۂ نظر کی وضاحت کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ ایران میں شاہ کے اختیارات کو ملا باحثیت تائبین امام غائب مدعود کرتے ہیں، اگرچہ شاہ باحثیت سربراہ مملکت بااختیار ہے اور نظم و نسق کے تمام شعبے اسی کے ماتحت ہیں، لیکن اس کے تمام اختیارات مجتہدین کے دینی اختیارات کے تابع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں دستوری اصلاحات کے نفاذ کے لیے تاریخ میں وہاں کے مجتہدین نے عملی حصہ لیا۔ خوارج کے مختلف فرقوں کے نقطۂ ہائے نظر کی تفصیل پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ بعض کے نزدیک خلافت کے قیام کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے اسے مسلمانوں پر فرض قرار نہیں دیا گیا۔ صفحہ نمبر 402 مقالے کے اختتامی حصے میں اقبال تحریر کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں تو ریاست کا بنیادی اصول انتخاب ہی قرار دیا گیا ہے، اگرچہ حکومت کی عملی تشکیل کے سلسلے میں اس کی تفاصیل طے کرنے کا معاملہ کئی اور امور پر چھوڑا گیا ہے۔ بدقسمتی سے انتخابات کے بنیادی اصول کی خالص جمہوری خطوط پر نشوونما نہ ہوئی، جس کے سبب مسلم فاحتین ایشیا کی سیاسی بہتری کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ پھر دنیا اسلام میں جدید سیاسی رجحانات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج کے زمانہ میں مغرب کے سیاسی نظریات کے زیر مسلم ممالک میں سیاسی زندگی کے اثار اس سر نو نمودار ہوئے ہیں۔ مصر نے برطانوی غلبے کے سبب نئی سیاسی زندگی کی ابتدا کی ہے، ایران نے شاہ سے آئین حاصل کیا، اور ترکی میں ینگ ترک پارٹی نے بھی اپنے مقاصد کی تحصیل کے لیے جدوجہد جاری رکھی ہوئی ہے۔ مگر ان سیاسی مسلحین کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اسلام کے آئینی اصولوں کا گہرا مطالعہ کریں اور محض نئے تمدن کے پیغمبر بن کر اپنے عوام کے قدامت پسندی کے جذبے کو ٹھیس نہ پہنچائے، بلکہ انہیں تو متاثر کرنا مشکل نہیں، کیونکہ مسلحین یہ بآسانی ثابت کر سکتے ہیں کہ سیاسی آزادی کے جو نظریات وہ بظاہر یورپ سے مستعار لے رہے ہیں در حقیقت اسلام ہی کے اپنے تصورات ہیں اور ان کا عملی نفاذ آزاد مسلم ضمیر کا جائز مطالبہ ہے۔ اس مقالے میں پیش کردہ اقبال کے خیالات کو پوری طرح سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام میں ریاست کے تصور کے بارے میں ان کے بعد کے ذہنی ارتقاء کا ان خیالات کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اقبال نے اس بات پر بحث نہیں کی کہ مسلم فلاسفر کے نزدیک اسلامی ریاست کا تصور دیگر اقوام میں ریاست کے تصورات سے کیوں کر مختلف ہے۔ مثلا فارابی کی رائے میں ہر ریاست کا اولین فرد اپنے شہریوں کے لیے خوشی، مسدد یا سعادت کی تحصیل ہے۔ یونانیوں کے نزدیک سعادت کی تحصیل اسی دنیا میں ممکن ہے، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ صرف آخرت ہی میں حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اسلامی ریاست میں دوہری سعادت کا تصور موجود ہے، یعنی اسلامی ریاست پر اپنے شہریوں کے لیے اس جہاں میں بھی سعادت کی تحصیل کے لیے وسائل فراہم کرنا فرض ہے، اور آخرت میں بھی سعادت کے حصول کے لیے انہیں تیار کرنے کی ذمہ داری ہے۔ ابن خلدون کی رائے میں اسلامی ریاست اور سیکولر ریاست میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلامی ریاست خدا تعالیٰ کے واضح کردہ قوانین کے تابع ہے، مگر سیکولر ریاست انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر قائم ہے۔ فارابی یونانی فلاسفر بالخصوص افلاطون کے سیاسی تصور فلسفی بادشاہ سے متاثر تھا، اس لیے اس کے قول کے مطابق مثالی اسلامی ریاست المدینہ الفاضلہ وہی تھی جو ان حضور نے بحثیت پیغمبر امام قائم کی، اور اس ریاست کے شہری خوش نصیب تھے کیونکہ انہیں حقیقی طور پر دوہری سعادت نصیب ہوئی۔ اقبال نے اپنے مضمون میں اس بحث کو بھی نہیں چھیڑا کہ خلافت کا قیام یا ترکی میں اس کا تسلسل قائم رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ ترکی یا سلطنت عثمانیہ کے دیگر حصوں میں سیاسی صورتحال کے مطالعہ نے غالباً اقبال پر یہ واضح کر دیا تھا کہ خلافت کا مستقل مخدوش ہے، اس لیے مسلم ممالک کے اتحاد کی بنیاد خلافت کی بجائے کسی اور اصول پر رکھنا ناگزیر ہے۔ لیکن جس زمانے میں یہ مقالہ تحریر کیا گیا، ترکی خلافت ہی کو اتحاد اسلام کا خارجی مظہر سمجھا جاتا تھا۔ زیر نظر مقالے میں اقبال کے بعض افکار توجہ طلب ہیں، مثلا یہ کہ قرآن مجید میں ریاست کا بنیادی اصول انتخابات ہی کو قرار دیا گیا ہے، اگرچہ حکومت کی عملی تشکیل کے متعلق تفاصیل طے کرنے کا معاملہ کئی اور امور پر چھوڑا گیا ہے، یا یہ کہ اسلامی دستور میں اس قانون سازی کا کام وکلا کو سونپا گیا اور اسلامی قانون کا ڈھانچہ عملی یا انتظامی شکل میں قاضیوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ مزید برآں آپ اسلامی ریاست کے لیے اصلاح مسلم کامن ویلتھ دولے مشترکہ استعمال کرتے ہیں، صفحہ نمبر 404۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں بھی اقبال نے ابن تمیمہ کی طرح ریاست کے اسلامی تصور کی بنیاد صرف ملت اور اسلامی قانون کے دو اصولوں پر استوار کی اور خلافت کے اصول کو خاص اہمیت نہ دی۔ قرآن مجید اور حدیث میں مسلمانوں کے لیے کسی حتمی کانسٹیٹیوشن یا حکومت کی قسم کی تفصیل موجود نہیں ہے، کیونکہ ایسے ادارے ملت اپنے ضمیر کی روشنی میں قائم کر سکتی ہے اور بر صورت وہ دائمی قرار نہ دیے جا سکتے تھے، اس لیے کہ ملت کی بدلتی ہوئی سیاسی ضروریات کے تحت وہ قانون تغیر کے پابند تھے۔ اسلام کا اصل مقصد ایک ایسی ملت کو وجود میں لانا تھا جو قانون شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتی ہو، اس لیے قانون شریعت کے نفاذ یا اطلاق کے لیے ملت کو اپنی رضا کے مطابق ایسا نظام حکومت قائم کرنے کا اختیار دیا گیا جو اس کی ضروریات کو پورا کر سکتا تھا۔ خلافت کی ضروریات ان حضور کے وصال کے موقع پر 632 پر پیش ہیں، کیونکہ نئے معاشرتی نظام کی بقا کے لیے کسی ایک انتظامی سربراہ کے بغیر چارہ نہ تھا، اور سنی نقطہ نظر کے مطابق پیغمبر اسلام نے مسلطن اپنا کوئی جانشین نامزد نہ کیا تھا، لہذا خلافت کے قیام کے جواز کو بعد کے فقہ نے صورتحال کے پیش نظر ایک عقلی ضرورت قرار دیا۔ فقہ میں سے بیشتر کا اس مسئلے پر بھی اتفاق ہے کہ خلیفہ کا تقرر عوام الناس ہی کی رضا سے ممکن ہے، اور اگرچہ قرآن مجید میں انتخاب کو ریاست کا بنیادی اصول قرار دیے جانے کے بارے میں کوئی واضح آیت نہیں ہے، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ احکام قرآنی کی روح سے اسی تصور سے مطابقت رکھتی ہے۔ خلفائے راشدین کے اوائلی دور 632 سے 661 میں گو انتخاب اور نامزدگی کا طریقہ پہلو بہ پہلو استعمال ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ مورثی ملوکیت کے تصور کی اسلام میں کوئی گنجائش نہ تھی، اور رضائے عوام کو کسی نہ کسی صورت میں خلیفہ کے تقرر کے لیے بنیادی اصول تسلیم کیا گیا تھا۔ مگر یہ ریپبلکن دور صرف 30 سال کی مدت تک مدینے میں قائم رہ سکا۔ 661 سے خلافت کا تصور متغیر ہوتا چلا گیا۔ عمومی عہد 661 تھا، 750 میں اس نے دمشق میں مورثی یا خاندانی ملوکیت کی صورت اختیار کر لی، اگرچہ بظاہر انتخاب یا نامزدگی کا قانونی مفروضہ قائم رکھا گیا۔ اس دور کو اقبال نے اپنی بعض کی تحریروں میں عربی استعمار کا دور قرار دیا ہے۔ دور عباسیہ 750 تھا، 1258 میں خلافت نے بغداد میں نہ صرف ایرانی طرز کی ملوکیت کا لبادہ اوڑھ لیا بلکہ اس کی وحدت بھی پارا پارا ہو گئی۔ مغربی اسلام یعنی اندلس ہسپانیہ میں آزاد اموی ریاست کا انعقاد ہوا، بعد میں شمالی افریقہ میں جنبا دیگر ادریسی اغلبی اور فاطمی خاندانوں نے آزاد ریاستیں قائم کی۔ فاطمی تو مصر کے علاوہ تمام شمالی افریقہ، شام، یمن اور حجاز تک کے علاقوں پر مسلط ہو گئے۔ فاطمی خاندان عقیدے کے لحاظ سے شیعہ تھا، جب حرمین شرفین ان کے قبضے میں چلے گئے تو قرطبہ میں اموی امیر عبد الرحمن سوم نے خلیفہ کا لقب اختیار کیا۔ چنانچہ 10ویں عیسوی میں دنیا اسلام میں ایک دوسری سے متصادم تین خلافتیں بغداد، قہرا اور قرطبہ میں قائم تھی۔ 10ویں، 11ویں اور 12ویں صدی میں مشرقی اسلام نے بھی کئی خاندانوں کا عروج و زوال دیکھا۔ ہسپانوی میں اموی خلافت 1037 میں ختم ہو گئی اور فاطمی امامت کا بھی صلاح الدین کے ہاتھوں 1171 میں خاتمہ ہوا۔ خلافت بغداد اور امرہ میں اقتدار کی مسلسل کشمکش نے اسلام میں سلطنت کے تصور کو جنم دیا اور کئی آزاد سلاطین دنیا اسلام کے مختلف حصوں پر قابض ہو گئے۔ बहरहाल 12वीं और 13वीं सदी के फुका ने खिलाफत बगदाद की वहादत का कानूनी मफरूजा बरकरार रखने की खातर ये फितवा जारी किया कि इस्लामी कानून की रौ से सुल्तान इसी सूरत में अपने मनसब पर फायज रह सकता है जब वो खलीफा बगदाद से सनत हासिल करे कि वो अपनी सल्तनत में मिलत इस्लामिया पर कानून शरीयत के मुताबिक हुकूमत करेगा। इसी तरह की सनत बरसगीर की तारीख में पहली बार सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने 1210 में खलीफा मुस्तनसर बाइल्ला से हासिल की, मगर सल्तनत और खिलाफत की आपस में कशमकश बिलाकर मुसलमानों की तबाही का बाइस बने। 1258 में मंगोलों ने बगदाद पर हमला किया और खलीफा मुतसम बिल्ला को कत्ल करके खिलाफत बगदाद का खात्मा कर दिया। 1258 से 1261 तक 3 साल के अरसा में दुनिया इस्लाम में कहीं भी कोई खलीफा ना था, सिर्फ आजाद मुस्लिम रियासतें थी। लेकिन 1261 में ममलूक सलातीन ने कला में खिलाफत का अहिया किया। 1261 से लेकर 1517 तक कहरा में नाम की खिलाफत कायम रही क्योंकि इसे कोई सियासी इकतदार हासिल ना था और इसकी नवयत खालसतन मजहबी थी। खलीफा सिर्फ सलातीन को असनाद देने का काम करता था। बरसगीर के सलातीन मोहम्मद तगलक और फरोज तगलक ने 14वीं सदी में खलीफा कहरा ही से ऐसी असनाद हासिल की थी, मगर मंगोल सलातीन ने जो 14वीं और 15वीं सदी में दायरा इस्लाम में दाखिल हुए खिलाफत कहरा को तस्लीम ना किया। 1517 में सुल्तान सलीम अव्वल मिस्र पर काबूज हुआ और खलीफा मतवक्कल सोम को अपने हमरा कस्तनतुनिया ले गया और यूं खिलाफत उस्मानी खानदान में मुंतकल हुई। अब तक खिलाफत सिर्फ कबीला कुरैश तक महदूद समझी जाती रही थी, लेकिन 16वीं और 17वीं सदी के फुका ने इस शर्त को मतूम करार दे दिया। खिलाफत उस्मानिया को ना तो शाह हाने ईरान ने तस्लीम किया ना बरसगीर के मुगल बादशाहों ने, क्योंकि इनके आपस में खुदा नदानी रकाबतें थी। उस्मानी खिलाफत का खात्मा 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के हाथों हुआ। इस मुख्तसर जायजे से जाहिर होता है कि गुज़िश्ता 1400 सालों में सफ़ा नंबर 407 खिलाफत ने तगैर पज़ीर सियासी सूरत हाल में कई शक्लें अख्तियार की। सदियों तक खिलाफत और सल्तनत का इम्तजाज रहा, फिर सल्तनत ने खिलाफत से अलग मुकाम हासिल कर के लिया और सल्तनत व खिलाफत की आपस में कशमकश जारी हुई, जिसके नतीजे में खिलाफत को शिकस्त खाना पड़ी। बाद में सल्तनत ही के जेर साया खिलाफत का ऐसा नौ हया हुआ और बिलाखर वो सल्तनत ही में मदगम होकर ख़त्म हो गई। तारीख इस्लाम शाहिद है कि वो सियासी हवादस ने दुनिया इस्लाम के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, लेकिन इस तमाम अरसे में फुका की यही मुसलसल कोशिश रही है कि वो असूल और हकीकत के दरमियान खलीज को अबूर करने के लिए ऐसे कानूनी इस्तदलालात पेश करते चले जाएं जिनसे मिल्लत का इस्लामी तशख्स बरकरार रहे। इस पस मंजर में यह समझना आसान है कि इकबाल ने इस्लामी रियासत का जिक्र करते वक्त इस्तलाह मुस्लिम कामनवेल्थ दौल मुश्तरका क्यों इस्तेमाल की, या इनके नज़दीक मिल्लत इस्लामिया का वतन सारी दुनिया किस एतबार से था। बात यह है कि इस्लामी रियासत का तसव्वुर जदीद मगरबी रियासत के तसव्वुर से मुख्तलिफ है। मगरबी तसव्वुर के मुताबिक रियासत की 3 खसूसियात हैं। अव्वल यह कि वो मुकम्मल तौर पर बाख्तियार हो, दो यह कि वो किसी मखसूस कौमियत पर मुश्तमिल हो, और सोम यह कि इसकी इलाकाई हदूद मुतय्यन हो। मगर इस्लामी रियासत में असल हाकमियत खुदा ताला की है और इस लिहाज से वो मुकम्मल तौर पर बाख्तियार नहीं, वो किसी मखसूस कौमियत पर मुश्तमिल नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी है या मुख्तलिफ कौमियतों के अदगाम से वजूद में आती है, और फिर इसकी इलाकाई हदूद का तय्यन भी मुमकिन नहीं क्योंकि वो आलमी रियासत है। बहरहाल अपने ज़हनी अर्तका के इस मरहले पर इकबाल का ज़्यादा जोर मिल्लत या कौमियत इस्लाम के तसव्वुर के पेशरफ्त पर था। इसी सबब वह इस्लामी कानून की इस सर नौ तशरीह के लिए इज्तहाद की ज़रूरियात पर बार बार इसरार करते थे। इज्तहाद के मसले में इनकी दिलचस्पी 1904 से साबित है क्योंकि इनके नज़दीक मिल्लत इस्लाम की तमीर इस्लामी कानून की तफसीर नौ के बगैर मुमकिन ना थी। इकबाल के अकीदे के मुताबिक इस्लाम का तसव्वुर हयात मुतहर्रक था, इसलिए इनकी निगाह में ऐसे कदामत पसंद उलमा की कोई वक़्त ना थी जिनका तसव्वुर हयात इस्लामी जामत था। गलबन इसी बिना पर उन्होंने बिलाकर इज्तहाद की रवायती तारीफ को कुल्ली तौर पर तस्लीम न किया और इसकी तारीफ इस्लामी मुआशरा में हरकत के असूल के तौर पर की। इज्तहाद के बाजू पर वो अक्सर अपने जानने वाले उलमा से खतो कताबत या बहस मुबासा करते रहते थे। इस सिलसिले में जनूबी हिंद में अपने लेक्चर से बेशतर उन्होंने एक अंग्रेजी मकाला बाअनवान इस्लाम में इज्तहाद सर अब्दुल कादर की ज़ेर सदारत 13 दिसंबर 1924 को हबीबिया हाल इस्लामिया कॉलेज लाहौर में भी पढ़ा था, लेकिन इसकी तफसील महफूज ना रखी गई। मुमकिन है यही मकाला अजाफे के साथ 1929 में दौरा अलीगढ़ के दौरान भी पढ़ा गया हो। इकबाल की ज़ेर नज़र तहरीरों से जाहिर होता है कि वो मुस्लिम हिंद की तमाम हम असर बरगजीदा हस्तियों में से पहली अहम शख्सियत थे जिसने कौमियत इस्लाम का अकीदा कबूल कर लेने के बाद हिंदुस्तान में मखलूत कौमियत के तसव्वुर को हतमी तौर पर खैर बात कहा। सर सैयद अहमद खान के हामी मुस्लिम कायदीन ने अगरचा कांग्रेस में शामिल होने से हमेशा ग्रेज किया, मगर इनके सामने कौमियत इस्लाम का कोई मुस्बत तसव्वुर ना था। दूसरी तरफ नौजवान मुस्लिम सियासी कायदीन में मुतहद्दा हिंदी कौमियत की हमायत का रुझान बढ़ रहा था और वो हिंदुओं से किसी न किसी किस्म की बामकसद मुफाहमत करना चाहते थे, यहाँ तक कि मौलाना शिबली भी इनकी हमायत में उठ खड़े हुए। लेकिन इकबाल अपने मौकफ पर मुस्तकिल मिजाजी से कायम रहे। इकबाल का अमली सियासत से कोई तल्लक ना था। वो अपनी जिंदगी के इस मुख्तसर इब्तदाई दौर में भी जब वो हुब्बे वतन के जज्बा के तहत मुतहद्दा हिंदी कौमियत के हामी थे, कांग्रेस में शरीक ना हुए और हिंदुस्तान को मुख्तलिफ अक्वाम का वतन करार दिया था। सफा नंबर 409। क्याम यूरोप के दौरान में इंकलाब ने इनका रुख कामला इस्लाम की तरफ फेर दिया। अहम मुमकिन है कि तकसीम बंगाल की तनसीख के लिए हिंदुओं के यक तरफा मुजाहरे भी मुतहद्दा कौमियत के तसव्वुर से इनके इन्हराफ का सबब बने हों। बहरहाल दिसंबर 1911 में आल इंडिया मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के इजलास में इकबाल के गले में हार पहनाने की रस्म की अदायगी से अजा है कि इस मायूस कुन और गैर यकीनी दौर में भी तलीम याफ्ता मुसलमानों की निगाह में इनका क्या मुकाम था। इकबाल ने अंजुमन हमायत इस्लाम के बाद जलसों या दीगर मौकों पर इस्लाम के मौजू पर तकरीरें की या मकाले पढ़े हैं और कई बयान के जरिए अपने ख्याल का इजहार भी किया है जिनका जिक्र मुनासब मकाम पर किया जाएगा। लेकिन इनका एक अंग्रेजी नोट जो 4 जून 1925 को एक खत की सूरत में उन्होंने साहबजादा आफ्ताब अहमद खान सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और बाद में वाइस चांसलर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अरसाल किया। खसूसी तौर पर काबिल तवज्जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उलूम इस्लामिया के मुतालिया के लिए एक नए शोबे का क्याम साहबजादा आफ्ताब अहमद खान के ज़ेर गौर था और इस सिलसिला में उन्होंने कुछ तजावीज़ मुरतब करके इकबाल को भेजी थी। इस तहरीर में इकबाल ने वक़्त के जदीद तकाज़ों को महफूज रखते हुए उलूम इस्लामिया के मकासद के सिलसिला में अपने ख्याल का इजहार किया है। इकबाल के बाद यूरोपी नकाल इसरार करते हैं कि इन्होंने इंसान दोस्ती ह्यूमनिज्म के मगरबी तसव्वुर का इतलाक इस्लाम पर किया है। इस्लाम ने ह्यूमनिज्म की रोवश की इखलाकी कदर कीमत से कभी इनकार नहीं किया क्योंकि इस जज्बे से तंग नजरी और तासब का खात्मा मकसूद था। लेकिन इकबाल की निगाह में मगरबी ह्यूमनिज्म की रूह इनफरादी थी, गो ये एक ऐसा फिक्री रुझान था जिसमें से इज्तवाई इतबार से इतिहाद इंसानी का कोई पहलू ना निकलता था। इसलिए ह्यूमनिज्म बजाय खुद एक तहरीक की सूरत में किसी आलमगीर या बैन अवी मुआशरे की तमीर का जरिया ना बन सकता था। बहरहाल इस तहरीर से ये जाहिर होता है कि इकबाल की राय में यूरोप में ह्यूमनिज्म की तहरीक बड़ी हद तक इन कुवतों का नतीजा थी जो फिक्र इस्लामी से बुरकार आए। फरमाते हैं यूरोप में इस्लाम का सियासी जवाल कहा जाता है बदकिस्मती से ऐसे वक़्त में नूरमा हुआ जब मुस्लिम हुक्मा को इस हकीकत का एहसास होने लगा था कि इस्तखराजी अलूम लातीनी अलूम लाजानी हैं और जब वो इस्तकराई अलूम की तमीर की तरफ किसी हद तक मायल हो चुके हैं थे। दुनिया इस्लाम में तहरीक ज़ेहनी अक़लियत अमलन इस वक्त से मसदूद हो गई और यूरोप ने मुस्लिम हुक्मा के गौर व फिक्र के सम्राट से बहरा अंदोज होना शुरू किया। यूरोप में जज्बा इंसानियत ह्यूमनिज्म की तहरीक बड़ी हद तक इन कुव्वतों का नतीजा थी जो इस्लामी फिक्र से बुरकार आई। ये कहना मतलब मुबालगा नहीं है कि जदीद यूरोपियन जज्बा इंसानियत का जो समर जदीद साइंस और फलसफे की शक्ल में बरामद हुआ है इसे कई लिहाज से महज इस्लामी तमद्दन की तसीह पजीरी कहा जा सकता है। इस अहम हकीकत का एहसास ना आज कल के यूरोपियन को है ना मुसलमानों को, क्योंकि मुस्लिम हुकमा के जो कारनामे महफूज हैं वो अभी तक यूरोप एशिया और अफ्रीका के कुतुब खानों में मुंतशिर और गैर मतबूआ हालतों में हैं। आजकल के मुसलमानों की जहालत का ये आलम है कि जो कुछ एक बड़ी हद तक खुद इनके तमद्दन से बरामद हुआ है वो इसे बिल्कुल गैर इस्लामी तसव्वुर करते हैं। मसलन अगर किसी मुस्लिम हकीम को ये मालूम हुआ हो कि आइंस्टाइन के नजरिए से मिलते जुलते ख्यालात पर इस्लाम के साइंटिफिक हलकों में संजीदगी से बहस मुबासे होते थे। अबुल मुअल्ली जिसका कॉल इब्ने रुशद ने नकल किया है, तो आइंस्टाइन का मौजूदा नजरिया इसको इतना अजनबी मालूम ना हो। इसके अलावा जदीद अस्तकराई मंतक से इसे जो बेगानगी है वो बहुत कुछ कम हो जाए। अगर इसको ये इलम हो कि जदीद मंतक का तमाम निज़ाम राजी के इन मशहूर मरूफ इतराजात से वजूद में आया है जो उन्होंने अरस्तु के अस्तखराजी मंतक पर आयद किए थे। सफ़ा नंबर 411। इकबाल की राय में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए ऐसे आलमों का तैयार करना अजबस ज़रूरी है जो इस्लामी फ़लसफे के साथ जदीद फ़लसफे पर भी अबूर रखते हों, क्योंकि जदीद अलूम के अखल व जज़ब करने में सिर्फ यही लोग मदद कर सकते हैं। इसी तरह ऐसे आलम तैयार करना भी नहायत ज़रूरी है जो इस्लामी तारीख आर्ट फ़नून और इल्म तहजीब व तमद्दन कल्चर के मुख्तलिफ पहलुओं पर हावी हों, जो इस्लाम के कानूनी लिटरेचर फिका में तहकीक व तद्दीक के लिए मौजू हों, और जो इस्लामी अफकार और अदबियात के मुख्तलिफ शोबों में अपनी तहकीकात से इस्लामी तमद्दन और जदीद अलूम के दरमियान हयात ज़हनी का जब तसलसल पाया जाता है इसकी अज़रोए नशोनुमा जस्तजू करें, दीनियात के मुताले के मुतल्लिक तहरीर करते हैं। हमारा पहला मकसद मौजू सफात के उलमा पैदा करना है जो मिल्लत की रूहानी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, मगर ज़िंदगी के मुतल्लिक मिल्लत के ज़ाविया निगाह के दोष बदोश मिल्लत की रूहानी ज़रूरतें भी बदलती रहती हैं। फ़र्द की हैसियत, इसकी ज़हनी व फ़िक्री आज़ादी और तबी अलोम की लामतनाही तरक्की, इन चीज़ों में जो तब्दीली वाक़या हुई है इसने जदीद ज़िंदगी के एहसास को यकसर मतगैर कर दिया है। चुनच्चा जिस किस्म का इलम कलाम और इल्म दीन अजमना मतवसत ताकि मुसलमान की तस्कीन कलब के लिए काफ़ी होता था वो आज तस्कीन बख्श नहीं है। इससे मजहब की रूह को सदमा पहुँचना मकसूद नहीं, इज्तहादी ग्राहियों को दोबारा हासिल करना मकसूद है, तो फिक्र दीनी को इस सर नौ तबीर करना कतन लाजमी है। और बहुत से मसलों की तरह इस मसले में भी सर सैयद अहमद खान की दूर रस निगाह कम बेश गोयाना थी। जैसा कि आपको इलम है उन्होंने इसकी बुनियाद ज़्यादातर एक गुजरे हुए अहद के फलसफियाना मुतअक्किदात व अफकार पर रखी। मुझे अंदेशा है कि मैं आपके मुस्लिम दीनियात के मुजज़्ज़ा नसाब से इतफाक़ नहीं कर सकता। मेरे नज़दीक कदीम तर्ज पर मुस्लिम दीनियात का शोबा कायम करना बिल्कुल बेसूद है। अगर इससे आपका यह मकसद नहीं है कि सोसाइटी की ज़्यादा कदामत पसंद जमात की तारीफ कलब मद्देनजर रहे, जहाँ तक रूहानियत का तल्लक है कहा जा सकता है कि कदीम तरदीनियात फरसूदा ख्याल की हामल है, और जहाँ तक तलीमी हसीयत का तल्लक है जदीद मसाइल का तलू और कदीम मसाइल की तरह नौ के मुकाबले में इसकी कोई कदर कीमत नहीं। आज ज़रूरत है कि दिमागी और ज़हनी कावश की एक नई वादी की तरफ महमीज किया जाए और एक नई दीनियात और इल्मे कलाम की तबीर व तश्कील में इसको बरसे कार लाया जाए। जाहिर है कि यह काम इन्हीं लोगों के हाथों से अंजाम पा सकता है जिनमें इस काम की सहलियत है, मगर ऐसे आदमी किस तौर पर पैदा किए जाएं। मेरी तजवीज़ यह है कि अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी का कदामत पसंद अंसर मुतमिन हो जाए तो आप कदीम तर्ज की दीनियात के स्कूल से इब्तदा कर सकते हैं, मगर आपका निस्बत अहम ये होना चाहिए कि आप तदरीजन इसकी बजाय इन तमाम लोगों की जमात को कार फरमा बनाएं जो मेरी तजवीज़ करदा स्कीम के मुताबिक खुद इत्तेजाद फिक्र पर कादर हों। इसके बाद देवबंद और नदवा के तलबा की अरबी अलमियत को तस्लीम करते हुए फरमाते हैं कि इनके बेहतरीन मवाद को बरसे कार लाने की कोई सबील निकाली जाए, इन्हीं अलूम इस्लामिया के नए शोबे में दाखिल लेने की दावत दी जाए, अंग्रेज़ी में इंटरमीडिएट पास करने पर मजबूर किया जाए, अलूम तबई रियाजियात फ़लसफ़ा और इक्तसादियात के मज़ामीन में इंतखाब करने को कहा जाए ताकि अफकार जदीदा और साइंस से मुतारफ़ हो जाएं। इसके बाद दूसरी मंजर में इन्हीं इस्लाम के फ़िरका जात इस्लामी अखलाक और फ़लसफ़ा माबाद तबीयात दीनियात कलाम और तफसीर पर मुजद्ददाना खुतबा देने के लिए यूनिवर्सिटी के फैलो बना दिया जाए। इनमें से जो खालस साइंटिफिक तहकीकात का जौक रखते हैं इनको इनके मिलानात तबई के मुताबिक जदीद राजियात साइंस और फलसफे की तलीम मुकम्मल तलीम दी जाए। सफा नंबर 413। जो तलबा इस्लामी तमद्दन की आम तलीम हासिल करना चाहते हों इनके कोर्स में मुस्लिम आर्ट और फन तमीर भी शामिल किया जाए और जो इस्लामी हिकमत अदबियात आर्ट तारीख नीज दीनियात का निसाब अख्तियार करें इनके लिए जर्मन और फ्रांसीसी जबानों का हसबे ज़रूरत जानना अजबस ज़रूरी करार दिया जाए। इस्लामी कानून की तलीम के मुतलक अरशाद होता है, हमें देवबंद और नदवा से ऐसे जहीन और तबाह लोग मुंतखब करने चाहिए जो कानून का खास जौक रखते हों क्योंकि कानून मुहम्मदी सरता सर तमीरी तश्कील का मुताल है। हमको चाहिए कि इन्हीं असूल फिक्का व कानून साजी के असूलों की तलीम दें और शायद जदीद इक्तसादियात और इज्तमाईयात की जामिया तलीम देने की भी ज़रूरत पेश आए। अगर आप चाहें तो इनको LLB बनाएं, बाद को वकालत का पेशा अख्तियार करने दिया जाए, दूसरों को यूनिवर्सिटी की फेलोशिप अख्तियार करने की इजाज़त दी जाए, कुछ अपने आप को कानूनी रिसर्च के लिए वक्फ कर दें। इस मुल्क में कानून मुहम्मदी जिस तरह से अमल में लाया जाता है वो बगाइयत तासब अंगेज़ है और बाद दुश्वारियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ मजलस कानून साज के क्याम से दूर हो सकती हैं। मुस्लिम कानून दान जिनका पेशा वकालत हो और वो जो कानून मुहम्मदी के असूलों पर पूरे तौर पर हावी हों वो अदालत और कौंसल दोनों में बेहद मुफीद साबित हो सकते हैं। आखिर में तहरीर करते हैं, मेरी राय में जदीद इस्लामी मिलतों के लिए जदीद दीनियाती अफकार की तोसी और तरवीज ज़रूरी है। कदीम और जदीद असूलात तलीम के मुबैन और रूहानी आज़ादी और माबदी इकतदार के मुबैन दुनिया इस्लाम में एक कशाकश शुरू हो गई है। ये रूह इंसानियत की तहरीक अफगानिस्तान जैसे मुल्क पर भी असर डाल रही है। आपने अमीर अफगानिस्तान की वो तकरीर पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने उलमा के अख्तियारात के हदूद मुतय्यन करने की कोशिश की है। सफ़ा नंबर 414। जदीद दुनिया इस्लाम की मुख्तलिफ तहरीकें इसी नतीजे की तरफ ले जाती हैं। इनके हालात के तहत मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैसियत से आपका फ़र्ज है कि दलेरी से इस वादी की तरफ कदम बढ़ाएं। इसमें शक नहीं कि मोहतात रहना लाजम होगा, मगर और फिक्र व हिकमत की इस्लाह इस तौर पर अमल में लानी होगी कि माशरती अमन व सुकून में खलल ना आने पाए। इस अहद में फन शायरी के मतलब इकबाल का मतमा नज़र क्या था, इस मौजू पर इनके एक वकी अंग्रेजी मजमून बनवान जनाब रसालत माब का हम असरी अरबी शायरी में पर तबसरा का मुतालिया बेहद ज़रूरी है जो 1917 में शाया हुआ। वह तहरीर करते हैं, अन हजूर ने अपने अहद की शायरी की नस्बत वक्तन फवक्तन जिन नाकदाना ख्यालात का इजहार फरमाया तारीख ने इन्हें महफूज किया है, लेकिन दो मौक़ों पर जो तनकीदात आपने अरशाद फरमाई इनसे मुसलमान हिंद को इस ज़माने में बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँच सकता है, इसलिए कि इनका अदब इनके कौमी इनहतात के दौर का नतीजा है और अब इन्हीं किसी नए अदबी नसबुल आइन की तलाश है। एक तनकीद तो ये जाहिर करती है कि शायरी किसी ना कैसी होनी चाहिए और दूसरा तनकीद का मकसद ये बताना है कि शायरी कैसी होनी चाहिए। अमराउल कैस ने इस्लाम से 40 वर्ष कबल का ज़माना पाया है। रवायत है कि अन हजरत ने इसकी नस्बत एक मौके पर जाहिर की है, अशरान अशराना वकायद हमली नार, यानी वो शायरों का सरताज है लेकिन जहन्नम के रस्ते में इनका सरदार। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें अमरुल कैस की शायरी में क्या दिखाई देता है, शराब अरगवानी के दौर, इश्क व हुस्न के जान गुजार जज्बात या होश रुबा दस्ताने, आंधियों से अड़ी हुई पुरानी बस्तियों के खंडर और रेतले वीराने की खामोशी के दिल हलाल देने वाले मनाजर, क्योंकि यही अरब के दौरे जहलियत की कुल तख्लीकी कायनात है। अमरुल कैस कुवत अरादी को जुनबश में लाने की बजाय अपने सायमीन के तखैल पर जादू के डोरे डालता है और इनमें बजाय होशियारी के बेखुदी की कफियत पैदा कर देता है।